नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बदलती वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। कहा, वर्तमान शासन का मूल सिद्धांत सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी और नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना। संसद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक और जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक पारित किया। अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले विधेयक को भी दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल प्रशासन की आलोचना की। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से इस घटना की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की अनुमति दी और केंद्रीय बल के तैनाती के निर्देश दिए। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सेना में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की। सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान। और भारतीय मुक्केबाज आदित्य प्रताप यादव मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से बदलती आकांक्षाओं के बीच एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है जो न केवल कुशल हो बल्कि नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए आज एक वीडियो संदेश में ये बात कही। वर्तमान शासन को नागरिक देवोभव के मंत्र से निर्देशित बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका स्पष्ट उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी संस्थाओं की क्षमता में निहित होती है और उस क्षमता को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद संसद में पारित हो गया है। राज्यसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के महानिरीक्षक के 50% पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है। विधेयक पारित होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि लोकसभा कुछ महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा करने के लिए इस महीने की 16 तारीख को बैठक करेगी। संसद ने जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक में कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने का प्रावधान है। इसके बाद राज्यसभा को 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित हो गया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, लोकसभा में विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक आंध्र प्रदेश को 5 करोड़ से अधिक लोगों के गौरव, आस्था, लोकतांत्रिक विश्वास की बहाली का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अभ्यास में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना का संज्ञान लेते हुए इसे निंदनीय बताया है। न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने निर्वाचन आयोग से इस घटना की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने आने की अनुमति दी और केंद्रीय बल की तैनाती के भी निर्देश दिए। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज हो गया है। पुदुचेरी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक ने आज पुदुचेरी में चुनाव प्रचार किया। भाजपा की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी माहे बीच पर आयोजित सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि माहे को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से लाभ हुआ है और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने एनडीए उम्मीदवार के लिए नेटापक्कम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। विपक्ष के नेता और डीएमके नेता आर शिवा ने विलियनूर और थिलाई नगर में SMVपुरम क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। वहीं भाजपा और उसके एनडीए सहयोगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जो कल चुनाव प्रचार के लिए पुदुचेरी पहुंचेंगे। पुदुचेरी से विपिन एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
केरलम में आज एलडीएफ और यूडीएफ ने घोषणा पत्र जारी किया। इस बीच सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तिरुवल्ला और तिरुवनंतपुरम में चुनावी सभाएं करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया है। श्री शाह ने आज भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और राजबिहारी बालीगंज और चौरंगी विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में कोलकाता में रोड शो किया। 142 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हुई। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। मतदान 29 अप्रैल को होगा। श्री शाह ने आज असम के नगांव जिले के कालियाबोर निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली में कहा कि भाजपा घुसपैठियों के खिलाफ है, लेकिन असम के वास्तविक मुस्लिम निवासियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज असम में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो कार्बी आंगलोंग में अनुच्छेद 244A लागू करेंगे। असम में सभी 126 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में मतदान होना निर्धारित है। कोवांग एलएसी असम के प्रमुख और प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। हमारे संवाददाता से और अधिक जानकारी।
89 नंबर खोवांग विधानसभा क्षेत्र असम के 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आगामी चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना निर्धारित है। खोवांग डिब्रूगढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है और यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है। वर्तमान विधानसभा चुनाव में खोवांग से 5 उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने चक्रधर गोगोई को उम्मीदवार बनाया है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की घटक पार्टी असम जातीय परिषद के अध्यक्ष दुरिन ज्योति गोगोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभाकर दास और बीजू द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार खोवांग में 157,000 से अधिक मतदाता है, जिनमें 81,000 से अधिक महिलाएं और 76,000 से अधिक पुरुष है। अमिनी लजुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रसारकों को परामर्श जारी किया है। इसमें असम, केरलम, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के चुनावों और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए मतदान समाप्ति से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान चुनाव सामग्री और एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत शांति स्थापना में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक योगदान देने वाले देशों में से एक रहा है और इसलिए शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।
We would like to emphasize that the
संयुक्त राष्ट्र मिशनों और हमारे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। शांति स्थापना के लिए सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक योगदान देने वाले संगठनों में से एक होने के कारण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2589 के अनुरूप हम शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही की मांग करते हैं।
अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीसकीपर्स।
श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिटेन ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर वार्ता के लिए भारत सहित कई देशों को आमंत्रित किया है। विदेश सचिव वार्ता में शामिल होंगे। पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देने का निर्णय किया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य संजय मंगल ने कहा कि यह निर्णय घरेलू उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में आपूर्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अस्थायी और लक्षित राहत के तौर पर लिया गया है।
This exemption is expected to benefit
इस छूट से पेट्रोकेमिकल, कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर निर्भर कई क्षेत्रों को लाभ होगा, जिनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, ऑटोमोटिव घटक और अन्य विनिर्माण क्षेत्र शामिल है। इससे इन उद्योगों के अंतिम उत्पादों के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।
रिलीफ टू कंज्यूमर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु प्राधिकार रखने वाले निर्यातकों को उनके निर्यात प्रतिबद्धताएं पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
एडवांस ऑथराइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैप फॉर कैपिटल गुड, इन स्कीम के द्वारा हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन करते हैं, एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और उसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है इनपुट्स का, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। ऐसे समय पर उसकी समय अवधि को जो उसको बढ़ाया गया है कि वे 3 महीने की अधिक अवधि में भी अपना एक्सपोर्ट कमिटमेंट फुलफिल कर सकते हैं, कोई लाइसेंस या कोई एडिशनल पेनल्टी पे नहीं करना है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेज में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेज को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं।
उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए भारत के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर उपलब्ध हैं। भारतीय मुक्केबाज आदित्य प्रताप यादव मंगोलिया के उलान बचार में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आदित्य ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में सऊदी अरब के मूसा अलहौसा को सर्वसम्मति से 5-0 के निर्णय से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लो मदाविनो से होगा। आईपीएल T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आकाशवाणी न केवल मनोरंजन का स्रोत है बल्कि ज्ञान संवर्धन और आस्था तथा सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मान का सशक्त माध्यम भी है। आज आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम जनता से सीधे जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी लखनऊ ने दिग्गज कलाकारों को मंच प्रदान किया है। आकाशवाणी महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि आकाशवाणी लोक प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाने के लिए नई तकनीकों के साथ विश्वसनीयता बनाए रखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बदलती वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। कहा वर्तमान शासन का मूल सिद्धांत सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी और नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना। संसद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक और जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक पारित किया। अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले विधेयक को भी दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने मालदा में SIR प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल प्रशासन की आलोचना की। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज। और भारतीय मुक्केबाज आदित्य प्रताप यादव मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।